प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता पढ़ेंगे। अभी तक आपने पढ़ा है कि उस समय के रिवाज के मुताबिक पांडव और कौरवों ने चौसर खेला था और जो चौसर का खेल आप खेलते हैं या गांव-गांव में खेला जाता है वह चौसर उस तरह का नहीं था। उसमें धन संपत्ति की हार जीत होती थी। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी ने यह खेल खेला था और उसने युधिष्ठिर को हरा दिया था। इसके परिणाम स्वरूप पांडवों का राज छिन गया था और उन्हें 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। पांडव खुशी खुशी वनवास चले गए थे। अब इसके आगे पांडवों के वनवास जाने के बाद भी दुर्योधन के मन में शांति नहीं थी। वह सदा इसी कोशिश में रहता था कि पांडव और दुखी हों और उनके दुख वह अपनी आँखों से देख सके। पांडवों के वनवास के दिनों में अनेक ब्राह्मण उनके आश्रम से लौटकर हस्तिनापुर गए थे। उन्होंने पांडवों की तकलीफों के समाचार धृतराष्ट्र को बताए और सारी सभा में बताए, जिसे सुनकर धृतराष्ट्र तो बहुत दुखी हुए किंतु कर्ण, शकुनी और दुर्योधन बहुत खुश हुए और उनके मन में पांडवों को देखने की इच्छा जागी। दुर्योधन ने अपने साथियों से पूछा कि ऐसी क्या तरकीब हो कि हम पांडवों को देख सकें। तब कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी थी कि पांडव जहाँ ठहरे हैं उसी के पास द्वैतवन की कुछ बस्तियाँ हमारे अधीन हैं और उन बस्तियों में चौपायों माने चार पैर वाले पशुओं की गणना गिनती राजकुमार करते हैं। इस बहाने आप राजा से वहाँ जाने की अनुमति ले लीजिए। राजा ने अनुमति दे दी। तब दुर्योधन भारी सेना लेकर उस द्वैतवन के निकट पहुँचा। वहाँ सेना के लिए ठहरने की व्यवस्था की जाने लगी, लेकिन जिस जगह उनके ठहरने की व्यवस्था की जा रही थी उसके पास ही गंधर्व के राजा चित्रसेन अपने परिवार के साथ डेरा डाले हुए थे। उनके सैनिकों ने कौरव सेना से वहाँ डेरा नहीं डालने का आग्रह किया, लेकिन कौरव सेना नहीं मानी। परिणामतः दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कर्ण भी युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन गंधर्व सेना के सामने उसकी एक नहीं चली और उसे वहाँ से भागना पड़ा। यहाँ तक कि चित्रसेन ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। जब युधिष्ठिर को ये संदेश मिला कि दुर्योधन और उसके साथी बंदी बना लिए गए हैं, तो उन्होंने भीम और अर्जुन से कहा, भैया आज कुछ भी है, आखे भी हमारे भाई हैं और हमारे आपस में बैर है, लेकिन किसी बाहर वाले के लिए हम ऐसा मौका नहीं दे सकते हैं। और यहाँ याद रखिए, पांडवों की यह बात संस्कृत में कहते हैं, वयम पंच वयम पंच वयम पंच सतानी ते, अन्यै सह विवादे तो वयम पंच सतान्येव। इसका हिंदी है, पांडव कहते हैं हम पांच हैं हम पांच हैं हम पांच हैं, और कौरव सौ हैं कौरव सौ हैं कौरव सौ हैं, मतलब बड़े जोर दे करके कहते हैं कि हम पांच अलग हैं वे कौरव सौ अलग हैं। लेकिन अन्यै सह विवादेतु, लेकिन यदि दूसरे के साथ विवाद होगा झगड़ा होगा तो वयम पंच सतान्येव, तो हम 105 हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। हमारा आपसी में किसी के साथ बैर विरोध है, लेकिन इसका लाभ कोई दूसरा उठाए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस बात को समाज में देश में भी याद रखना चाहिए। हम अनेक अवसर पर देखते हैं हमारे यहाँ समाज में भी और देश में भी, देश में तो बहुत ज़्यादा ही होता है कि सरकार का विरोध करने वाले ऐसी बातें कहे जाते हैं जिसका लाभ हमारे दुश्मन देश उठाने लग जाते हैं। जब आप बड़े हो जाएं तब विशेष करके इन बातों का ध्यान रखिए कि हमारे किसी भी बात का लाभ हमारे दुश्मन देश नहीं उठा सके। तो इसी उद्देश्य से युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को भेजा। भीम और अर्जुन गए और उन्होंने कौरवों की जो सेना बिखर गई थी उसको इकट्ठा किया और कौरवों को बंधन मुक्त कराया। अब आप देखिए, कौरव बहुत अपमानित हुए और हस्तिनापुर चले गए। उन्हें और भी ज़्यादा बेकार लगा क्योंकि उन्हें वे पांडवों का बुरा देखना चाहते थे, लेकिन उनका बुरा पांडवों ने देख लिया। वे वापस हस्तिनापुर गए, लेकिन अभी भी दुर्योधन के मन में जो पांडवों के प्रति द्वेष था वो कम नहीं हुआ। एक बार महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के राजमहल में पहुँचे। दुर्योधन ने उनका बहुत सत्कार किया, ऋषि बहुत खुश हुए। तब उन्होंने दुर्योधन से कहा, हम तुमसे बहुत खुश हैं। दुर्योधन ने अवसर का फायदा उठाया और दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना की, आपने हमें आशीर्वाद दिया है, हम चाहते हैं कि हमारे भाई पांडवों को भी आप आशीर्वाद दें और ऐसे समय आप उनके यहाँ पहुँचें जिस समय भोजन आदि से निवृत्त होकर वे विश्राम कर रहे हों। इसमें दुर्योधन की चाल थी कि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी स्वभाव के थे और यदि थोड़ा सा भी गलत कुछ होगा तो वे युधिष्ठिर आदि को छोड़ेंगे नहीं। दुर्वासा ऋषि ने उसकी बात मान ली और अपने शिष्यों सहित पांडवों के यहाँ गए। पांडवों ने उनका बहुत स्वागत किया। फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं स्नान करके भोजन करूंगा। स्नान करने के लिए ऋषि अपने शिष्यों सहित नदी की ओर चले गए, लेकिन द्रौपदी चिंतित हो गई, क्योंकि उनके पास जो एक अक्षय पात्र था, आपने अक्षय पात्र के बारे में सुना होगा, ये अक्षय पात्र उन्हें सूर्य ने दिया था, और अक्षय पात्र की ये शर्त थी कि इसमें से कितना ही भोजन निकाला जा सकता है, लेकिन यदि द्रौपदी भोजन कर लेगी और एक बार इस पात्र को, पात्र माने बर्तन, साफ कर दिया जाएगा, तब उस दिन इसमें से भोजन नहीं निकलेगा। द्रौपदी बहुत परेशान थी। इसी बीच श्री कृष्ण वहाँ आ गए, और श्री कृष्ण ने द्रौपदी की परेशानी देखकर द्रौपदी से कहा, बहना जरा अक्षय पात्र तो दिखाओ। द्रौपदी बड़े संकोच में अक्षय पात्र लेकर आई। उस अक्षय पात्र के एक कोने में अन्न का एक दाना और भाजी, भाजी समझते हैं, साग भी कहते हैं इसको, कोई भी पत्ती, मेथी, पालक, इनकी जो पत्ती होती है, ऐसी कोई पत्ती लगी हुई थी, उसे निकाल कर श्री कृष्ण ने खा लिया। और उसका चमत्कार हुआ कि दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का पेट भर गया। जब भीम दुर्वासा ऋषि को भोजन के लिए बुलाने गए, तब दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों ने कहा, हमें तो भूख नहीं है, दुर्योधन से कहना हमें क्षमा करें, हम भोजन नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहकर वे वहाँ से चले गए। और दुर्योधन ने जो सोचा था वह पूरा नहीं हो सका, इसलिए कहा गया, द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। और एक और सूत्र आपको याद रखना चाहिए, किसी के बुरा चाहने से दूसरे का बुरा नहीं होता है। हाँ, इतना निश्चित है, उसका स्वयं का बुरा अवश्य हो जाता है। जैसे हम किसी को जलाने के लिए उसके ऊपर आग फेंकें, तो आग फेंकने में हम अंगारा अपने हाथ में उठाएंगे, ये तो निश्चित है कि हमारा हाथ जलेगा ही जलेगा, सामने वाले का बुरा हो या ना भी हो, हो सकता है वह बच जाए और उसका बुरा नहीं हो सके, वो जले नहीं, लेकिन हमारा हाथ तो निश्चित रूप से जल जाएगा। इसलिए बच्चों, इस पाठ का मतलब यही है कि हम अपने मन में किसी के प्रति भी द्वेष नहीं पालें। एक कवि ने लिखा है, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। हमारे जीवन में भी मित्रता का भाव होना चाहिए और सबके साथ होना चाहिए, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।